कभी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे।
तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।
क्या सुना गीत में? चढ़ता है कुछ नशा कुमारों को? बाबा ने हमारे जन्म जन्म के अरमान, अरमान माने जो भी इच्छाएं थी, उमंगें थी, जो कुछ हम पाना चाहते थे वो सब पूर्ण किया है। अब किसकी बारी है? क्या करेंगे हम? क्या अरमान है बाबा का हमसे? बात समान बन जाए, छोटी मंजिल है बड़ी। लेकिन अगर हम ये मान लें, मैं बाप समान हूं, तो अनेक क्वालिटीज सहज ही जीवन में आ जाएंगी। तो सोचें, बाबा ऊपर बैठकर जब नीचे देखता होगा तो कैसे और क्या करता होगा? वही हमें करना है, क्योंकि हम उसके समान हैं। जब वो भक्तों की पुकार सुनता होगा रोज, तो क्या करता होगा? क्या करता होगा? पुकार। क्या करता होगा? कैसे करता होगा उपकार? बोलो, माताओं से पूछते हैं। माताएं ध्यान से सुन रही हैं, अच्छी बात है। बोलो। सकास देता है और हमें हमसे दिलवाता है। रहम दिल है, ऐसा होता नहीं कि कोई उसे बहुत पुकार रहा हो वो सुने ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे मुरली में आया था, किसी ने कैच किया हो कुछ समय पहले, साकार में बाबा थे, तो किसी ने पूछा, बाबा सोमनाथ का आपका मंदिर लूटा, आपको गुस्सा नहीं आया? मुरली में थी ये बात। बाबा ने कहा, नहीं। क्यों नहीं आया? वो भी बच्चे हैं, पर काम तो गलत कर रहे हैं ना बच्चे। बोलो और बताओ रहस्य की बात। बाबा को गुस्सा करना आता ही नहीं, तो करे कैसे? तो हम बाबा को जानते चले। हालांकि सोमनाथ के मंदिर को लूटने के बाद आप लोगों ने तो कहानी नहीं पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है। महमूद गजनवी को कुछ भी वापस नहीं ले जाने दिया था। भारत की सेनाएं कुछ मिल गई थी, राजा भोज उज्जैन का और अजमेर का राजा। अजमेर के राजा को मरवा के ही वो आगे बढ़ा था धोखे से। जो वो पूजा करने जा रहा था उसको मरवा दिया, नियम नहीं था ऐसा। तो राजा भोज ने ऐसी प्लानिंग की कि उसकी सेनाओं को जो वापिस आ रहा था घेर लिया, और कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो उसे रास्ता बताएंगे, और उसे उतार दिया डेजर्ट में, रेगिस्तान में, जहां उन दिनों तेज तूफान चलते थे। तूफान आए, उसके ऊंट ऊंट सब मर गए, वो भी दब गया था। किसी ने उसको निकाला, थोड़े से सैनिकों के साथ वो गजनी पहुंचा था। गजनी अफगानिस्तान में है, फिर नहीं आया वो। उससे पहले वो अटैक करता था और आसपास के राजाओं को लूट के ले जाता था, छोटे छोटे होते थे। तो बाबा को गुस्सा आता ही नहीं, रहम दिल है वो, हमेशा रहम करता है। पहले तो मैं आप सबको ये कहूंगा कि अब अव्यक्त बाबा का पाठ केवल दृष्टि देने का चलेगा, आगे के बारे में कोई कंफ्यूज ना हो, बाबा क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। मैंने पिछली बार भी बताई थी ये बात, कईयों की समझ में आती है कईयों की नहीं, पर अब इस पे ही ध्यान देना है। अब दृष्टि से सब कुछ लेने के लिए अपने को तैयार करना है। नहीं तो बहुत लोग सोच रहे थे बाबा कभी दिल्ली याद कर रहा, कभी अजमेर, कभी गुड़गांव, कभी अहमदाबाद, ऐसा बाबा ने पहले तो नहीं किया कभी। कई लोगों ने संदेशी के माध्यम से संदेश भी दिलवाया, उसने बताया कि बाबा दिल्ली याद दिला रहा है। भगवान को इस तरह याद दिलाने की जरूरत है? या बच्चों को पता नहीं कि दिल्ली हमारा राज्य होगा? पता नहीं क्या ये दिल्ली थोड़ा ही होगी, कोई और इंद्रप्रस्थ होगा। इसलिए मुरली वो नहीं थी, बाबा दृष्टि दे के चले गए थे, फिर वो दूसरा पाठ था। कोई भी डाउट में ना आए, बाबा से दृष्टि ले, क्योंकि बहुत लोगों को संशय हो रहा है। बाबा 69 में बताए थे, जब बाबा आए और केवल दृष्टि दे, समझ लेना अव्यक्त पाठ की समाप्ति है। तो ये समाप्ति की ओर संकेत है, हो सकता है ये इस तरह का लास्ट सीजन हो या एक और चले, क्योंकि उसके बाद जय जयकार होनी है। बाबा को आना नहीं पड़ेगा, कुछ और पाठ चलेगा इस सृष्टि पर। तीसरा रोल साकार चला, अव्यक्त चला। जिन्होंने बहुत समय अव्यक्त पाठ देखा है वो कौन कौन बैठे हैं यहाँ? 10 साल, 15 साल, 20 साल, सभी ने उसका बहुत सुख लिया है, लिया है ना? 4 घंटे, 5 घंटे, राजीव कैसी अव्यक्त लहर, वहां से उठने को मन नहीं करता था। कितनी गहरी मुरलियां, मुझे तो मुरली का रस सबसे ज्यादा रहता है, वो मुरलियां। तो बाबा ने ज्ञान पूरा कर दिया है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, साकार में ही बाबा कह आए थे, मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर शांत हो जाता हूँ। अब वो पाठ है, सारा ज्ञान दे दिया, कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब दूसरा रोल चलेगा, अब आत्माओं को तैयार करेगा बाबा। इसलिए तैयार करने के लिए क्या कराएगा इस सृष्टि पर? बोलो बोलो और बोलो। अब ये ना सोचो मोदी प्लान चल रहा है, प्रभु प्लान चल रहा है, किनके लिए? हम सब के लिए। क्योंकि संपूर्णता तब तक नहीं आएगी जब तक वैराग्य न हो, और वैराग्य ब्राह्मणों की डिक्शनरी से लोप हो गया है, शब्द ही नहीं है। हम लोग भी क्लास नहीं कराते, क्योंकि चेहरे देखते हैं ना वैराग्य पे क्लास कराने से, उतरे हुए सबके, तो हमने भी छोड़ दिया। मैं कहा टाइम पे ही कराएंगे, ठीक किया नहीं? तो बाबा साकार में कह आए थे, वो प्रत्यक्ष होने लगा। सुना देता हूँ आपको, सृष्टि को झटके लगेंगे, ब्राह्मणों को वैराग्य आएगा, फिर शांत हो जाएगा, कुछ लोग फिर ठंडे हो जाएंगे, उनमें से कुछ ब्राह्मण तेज प्रसाद करने लगेंगे सदा के लिए, फिर झटका लगेगा, फिर जो ठंडे हुए थे चुस्त होंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो ठंडे हो जाएंगे, फिर और कुछ लोग चुस्त होके तेज प्रसाद करेंगे। इस तरह ये झटके लगते लगते अनेक आत्माएं संपूर्णता को प्राप्त करेंगी। लेकिन उसके लिए बाबा ने सावधान कर दिया था, समय कराएगा। तो टीचर कौन हो गया? परमात्मा टीचर बन के आया, तब नहीं किया, पर जब समय टीचर बन के आया, अब अंतर सोच लेना क्या मिलेगा। परमात्मा स्वयं परम शिक्षक बनकर आया सब कुछ देने, तब जिसने नहीं किया समय के थपेड़े उसको कराएंगे। बहुत जगह हो रहा है, सुना देता हूँ एक कहानी। कहानी माताओं की है, माताएं बुरा तो नहीं मानेगी। नाम धाम बताए बिना सुनाऊंगा। एक माता, उसके पति के ऊपर 4 लाख कर्ज था, बेचारा दे नहीं पा रहा था, बीमार हो गया, बेड पकड़ ली, मानसिक रूप से नोटबंदी हुई, पत्नी आई मेरे पास, 12 लाख हैं, क्या करूं? बच्चों ने भी कहा और उसने भी, चुपचाप लेके यहां से निकल जाओ, तलाक, दोबारा ना आना यहां। ठीक किया या नहीं किया? माताएं क्या कहेंगी? चुप है माताएं तो। चलो भाई बताओ, ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। जिसका पति से प्यार नहीं, नोटों से प्यार है, वो कैसी नारी है सोच लो। दूसरी कहानी, 20 करोड़ रखे हैं। किसने रखे? जिसमें गेहूं रखे जाते हैं ना, बना लेते हैं। अब नोटबंदी हो गई, अब वो ऐसी थी, खर्च न करे, नौकरानी को पैसे न दे, बच्चों को भूखा रखे, दवाई के पैसे नहीं हैं। अब कह रहे निकालो इनको, फेंको, सड़ भी गए थे नीचे के, सेवा में भी नहीं लगाया। समझिए ना कौन होगी, सेवा में भी नहीं लगाया। इसको ही बाबा कहते हैं सफल उनकी होगी, बाकी सबके जीरो, कागज रह गए, बहुत होके रह गए। मैं तो गया था तो कहानियां सुनने को मिली, मुझे तो पता ही है, जो आम लोगों को नहीं पता वो हम सबको पता है। जितने बड़े नेता, बड़े ऑफिसर, सबके कागज हो गए, उनके पास तो है सारा धनमाल। हर बाबा के बच्चों को आएगा वैराग्य, हमें उनसे क्या लेना देना। हमारा लक्ष्य है वैराग्य में स्थित होकर अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो चैलेंजेज और आए, जो चुनौतियां और आए, उसमें हम अपनी स्थिति को स्थिर रख सकें। सभी चिंतन करेंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा सिवाय, माताओं से उत्तर लेंगे। माताएं गंभीर हो गई, इसलिए मैं बातें नहीं बताता, हंस लो जरा, थोड़े से मुस्कुराओ। एक ने मुझे स्माइल मेडिटेशन सिखाया, सुना आपने नया नाम, स्माइल मेडिटेशन, बीमारियों के लिए। मैंने कहा है तो बड़ा अच्छा, मैं करके देखूंगा, अगर बीमारी ठीक होती है तो सबको सिखाएंगे। बोलो कौन काम आएगा, और बोलो कौन, और हमारे पुण्य कर्म, और जितना हमने सेवाओं में सहयोग दिया, सेवाओं में आ गए ना सहयोग देने, जितना हमने सेवाओं में सहयोग दिया, जितना हमने सर्व खजाने जमा किए, वो काम आएंगे। जिसकी स्थिति अच्छी होगी वो भूखा नहीं रहेंगे, दूध भी मिलेगा, चाय भी, लाल मिर्ची भी, माताओं को चाहिए ना, मारा महाराष्ट्र वालों को। और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उनके घर में नमक भी नहीं होगा, कब बिना नमक का ही खाना पड़ेगा। इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ बनाना ये परम आवश्यक है। तो मैं सबसे कहूंगा, निकाल दें अपनी बुद्धि को उन सब चीजों से जो हमारे साथ नहीं जाएंगी, सब ध्यान दें, निकालना ही पड़ेगा। जो ज्ञान युक्त होकर नहीं निकालेंगे, समय पुनः उनसे निकलवा देगा, और वो काल बहुत खतरनाक होगा, वही दुखों के पहाड़ गिरेंगे सृष्टि में। मैं जस्ट आपको तैयार करा रहा हूँ, आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, समय ऐसा ही आ रहा है। मैं कुवैत में गया और बहरीन, दो देशों में, वहां के लोगों में डर है, बहरीन में तो कम है, कुवैत में बहुत, छोटे से देश हैं, कोई भी अटैक करके सबको ले सकता है, कुछ नहीं है उनके पास सेना वेना ज्यादा, कोई भी फट से, जैसे सद्दाम हुसैन ने किया था ना, एक ही दिन में फट से आ जाओ। तो डर है वहां कि पता नहीं कब खेल बिगड़ जाए। हमारे देश में ऐसे डरने की तो बात नहीं। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा कल की मुरली के वरदान पर, याद तो किसी को नहीं होगी वो वरदान, रूहानियत की शक्ति द्वारा है आगे, याद, सब आत्माओं को संदेश देने वाले। अब ये काम हमें करना है, अभी हम एक एक जगह तो नहीं पहुंचेंगे, टीवी के द्वारा भी संदेश पाकर कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, लेकिन रूहानियत के बल से सबको संदेश देना है, और संदेश भी ऐसा देना है कि सभी बाबा को अपना पिता मान लें, एक बार दिल से स्वीकार कर लें वो मेरा है। मैं कुवैत और बहरीन गया, मैंने बताया दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं अरब, भारत के लोग बहुत हैं, भारत के लोगों ने बहुत डेवलप किया है, इसलिए दोनों जगह भारत वालों का सम्मान भी अच्छा है। अरब वालों की सेवा हुई, मैं भी पहली बार की मुस्लिम्स की सेवा, कि 200 की सभा आ गई है, 100 माताएं बुरके वाली हैं, मैं तो पहली बार देखा ऐसा कि उन लोगों में भी इतना आकर्षण। बहरीन में बहुत अच्छा, बहनों को मिला भी, महल है, राजा का महल था वो, बहुत अच्छी बड़ी जगह, तो एक अच्छा फ्लो। किसी ने भी नहीं पूछा तुम क्या सुना रहे हो, ये हिंदू धर्म की बात है, हम तो मुस्लिम है, कुछ नहीं, जो सुनाए वो अच्छा। मैंने क्लास में सबको कह दिया था इस हॉल को चार्ज कर दो आज, सबको अंदाज था 225 की रजिस्ट्रेशन हुआ था, 200 तो आएंगे ही, सऊदी अरब से भी आए थे, जहां मक्का मदीना है। तो मैंने देखा लोगों की सबकी प्यास एक ही है, वो किसी भी धर्म का हो, सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबको किसी न किसी तरह की टेंशन बढ़ती जा रही है, मानसिक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं लोग, अब उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं, कौन धर्म क्या धर्म, वो ठीक होने चाहिए। तो हमने सीधा सीधा ही राजयोग सिखाया, अभ्यास कराए, जो हम अपने भारत में कराते हैं वही वहां कराए, मैंने कोई चेंज नहीं किया था, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान दे दिया, उससे कनेक्शन शक्तियां लो, नो क्वेश्चन। तो मैं देख रहा था कि हमें ये सोचने की जरूरत नहीं इन्हें ये सुनाए या ये सुनाए, कुरान की बात सुनाए या बाइबिल की सुनाए या गुरु ग्रंथ साहब की सुनाए, इसकी कोई महत्ता नहीं है, महत्ता है केवल हम कैसे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं सेवाओं के लिए इसकी। तो हमें रूहानियत की शक्ति बढ़ाकर रोज सवेरे रूहों को संदेश देना है। मैं आपके सामने कुछ विधि रख रहा हूं, जो भी ये काम करें बाबा की सेवा वृद्धि के लिए, सबको संदेश देने के लिए, जो कर सकते हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए, रोज करें, काम 2-4 मिनट का है, लंबा चौड़ा नहीं। लेकिन पहले हमें रूहानियत की शक्ति बढ़ानी है, रूहानियत की शक्ति माना सीधी सी बात योग की शक्ति, योग से ही तो आत्मा में शक्ति आती है ना, आत्मा की शक्ति को रूहानी शक्ति कहते हैं, रूहानियत, आत्मा के सारे गुण आत्मा में आ जाएं इसको रूहानियत कहते हैं, और जब हम शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ लेते हैं जो रूहानी बाप है, तो आत्मा में बाबा की संपूर्ण शक्तियां आ जाती हैं, ये सब मिला के रूहानी शक्ति रूहानियत है। जितने हम इसको बढ़ाएंगे हमारे वाइब्रेशन सारे संसार में फैलेंगे। एक ने मुझे कहा, पता नहीं कहां अभी था, तुम्हारे वाइब्रेशंस 25 किलोमीटर तक जा रहे हैं। मैंने कहा तुमने कैसे नापा भाई, कुछ है क्या नापने का 25 किलोमीटर तक? मैंने कहा नहीं, सारे विश्व तक जाते हैं, 25 किलोमीटर तो बहुत छोटा एरिया है, हमें 25 किलोमीटर वालों का थोड़ा ही कल्याण करना, केवल दूर दूर तक करना है। फिर क्या करना है, योग की शक्ति बढ़ाकर, फिर मैं कह रहा हूं जो भी आप में से करें सवेरे योग करने के बाद, अपने को फरिश्ते स्वरूप में स्थित करें और एक अभ्यास करें, मैं आकाश में हूं थोड़ी देर के लिए, और चित्र बनाएं कि सारे संसार की आत्माएं चारों ओर हैं, अब उन्हें मन से संदेश दें। जो संदेश हम मुख से देते हैं ना, वो मन से देंगे सब धर्मों की आत्माओं को, तुम सब आत्माएं हो, पहला संदेश, तुम भगवान के बच्चे हो, वो तुम्हें अपना अधिकार देने आ गया है, अब उसको पहचानो, खुद खुदा इस धरा पर आ गया है, तुम्हारा परम पिता आ गया है, गॉड फादर आ गया है तुम्हें सब कुछ देने के लिए। अब ये खेल पूरा हो रहा है, सब आत्माओं को वापिस जाना है, अब चलने के लिए तैयारी करो। ऐसे ही बाबा संदेश देता ना, यही सब नहीं जैसे भी आप देना चाहें, पर उन्हें जगाना है हमें। भौतिकता में फंसी हुई आत्माएं, विकारों में उलझी हुई आत्माएं, दुख अशांति तनाव डर में से भयभीत आत्माएं, उन सबको जगाना है। जो मुख से नहीं सुनते कुछ, नहीं सुनते ना बहुत लोग, हम मुख से ज्ञान देते हैं सुनते नहीं है, ये तुम्हारा है ये हमारा है। इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, ये यूनिवर्सल चीज है, सबके लिए है। तो रोज एक टाइम फिक्स करके आत्माओं को संदेश देकर उनका आह्वान करेंगे। फिर ये तो हुआ सब धर्मों की आत्माओं के लिए संदेश, लेकिन अब दूसरा करना है देव कुल की आत्माओं का आह्वान। 2 करोड़ सतयुग के अंत तक की आबादी, पता है ना सबको, 2 करोड़। ये 2 करोड़ तो अच्छे ज्ञान लेंगे ना, पवित्रता धारण करेंगे, थोड़े समीप आएंगे अच्छी तरह से, जिसको हम ब्राह्मण परिवार कहेंगे। 2 करोड़ की हमारी संख्या होनी ही चाहिए, तो बहुत थोड़ी है। तो ऐसे ही सवेरे फरिश्ते बनकर अब देव कुल की आत्माओं का आह्वान करेंगे सारे संसार में, और भारत में विशेष देव कुल की, सूर्य वंश की जो भी आत्माएं हैं, सब आ जाओ, तुम्हारा परम पिता तुम्हें बुला रहा है, जिसको तुमने बुलाया था वो तुम्हें बुला रहा है, जिसका तुम आह्वान करते थे वो आ गया है। अब मनुष्य देवता बनने के लिए, स्वर्ग का राज भाग पाने के लिए आ जाओ, लेकिन स्वमान चाहिए पूर्वज, मैं इस देव इस देवी हूँ, 2 कम से कम। हम पूर्वज बनकर संसार की सभी आत्माओं को संदेश देंगे, उन तक पहुँचेगा। इस देव देवी बनकर, पूर्वज बनकर देव कुल की आत्माओं को बुलाएंगे, क्या होगा, उनमें से कईयों को जैसे आवाज आएगी, कोई हमें बुला रहा है चलो। धीरे धीरे हम संदेश देंगे और इसमें जोड़ेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास आ जाओ, तो उन्हें वो आवाज आएगी और वो खींचे खींचे आएंगे। तो हमें देव कुल की आत्माओं को खींचना है, लेकिन योग बल से, जिसके पास जितना योग बल रूहानियत की शक्ति, उतनी ही ज्यादा आत्माओं को खींचेंगे। पसंद है, पसंद है, करेंगे, कौन कौन सब करेंगे, और आत्मिक दृष्टि देखने का भी अभ्यास इससे हो जाएगा। संसार के सभी मनुष्य मस्तक में देखो आत्माएं चमक रही ज्योति, तो ये भी एक सुंदर प्रैक्टिस हो जाएगी। इस सबसे एकाग्रता बहुत बढ़ेगी, और ये सूक्ष्म सर्विस हमारे पुण्यों के खातों को बहुत बढ़ाएगी। सबको ध्यान रखना है, इससे क्या होगा कि जो हमारे ऊपर पापों का दबाव है, जिसके कारण जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं, जिसके कारण मन हल्का नहीं रहता, खुश नहीं रहते, परिवारों में कोई ना कोई बाधा आती रहती है, वो ढीली पड़ती जाएगी। जैसे सभी माताएं और भाई जो सेवा में आते हैं, आप में से कई माताएं कई बार आती होंगी, कई बार जो आई हैं हाथ उठाओ, ठीक है। तो आप सबने देखा होगा इन सेवाओं का बल आपके परिवार को भी मिलता है, मिलता है, बताओ जो जिनको अनुभव है हाथ उठाओ, मिलता है ना। कई चीजें सहज होती है, आप तो बहुत बार आई है ना, कई चीजें सहज हो जाती है। और एक विशेष बात, बाबा की नजर आप पे रहने लगती है, बहुत बड़ी प्राप्ति है ये। और बाबा की मुरली में आप लोगों ने सुन लिया होगा 1-1.5 मास पहले ही, जिन्होंने ईश्वरीय कार्य में केवल मदद भी की है, मान लो हम प्रदर्शनी लगाने गए हैं, हमें किसी मंदिर का आंगन चाहिए, पुजारी ने कहा लगा लो या जो उसके ट्रस्टी हैं लगाओ, उन्होंने सहयोग दिया ना, तो बाबा ने कहा विनाश काल में उन्हें भी सहयोग मिलेगा। सोचने की बात, कितना दयावान है शिव बाबा, जिसने एक बार उसको कह दिया मेरा बाबा, उसको भी सतयुग में जाने प्रवेशता का अधिकार मिल गया, कम से कम प्रवेशता। अभी आगे क्या करना हो तुम जानो, पर प्रवेशता का पासपोर्ट उसने दे दिया। कितनी बड़ी चीज है, हमें पहचानना है शिव बाबा को, क्या है वो, कितना प्यार है उसका अपने बच्चों से, वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो आया है सुखों का मार्ग बताने और बाकी समाप्त कर देने के लिए, ताकि संसार में दुख रहे नहीं। तो हम भी ये कार्य करेंगे, सेवाओं में सभी सहयोग देते रहें, ये बहुत काम आएगा, इससे पुण्य जमा होते हैं। हम सबको तब पता नहीं चलता जब हम सेवा करते हैं, माताएं सोचती होंगी हम तो क्या स्थूल सेवा करते हैं, सब्जी काटी रोटी बनाई इसका क्या है, ऐसा नहीं सोचना, बहुत बड़ा पुण्य है। समझ रहे ना कुमार, बैठे सेवा में टेलरिंग में आप आए हैं, पुण्य हो रहा है, ये पुण्य बहुत काम आएगा हम सबके विनाश काल में। बाबा कहा करते थे, अभी तुमको अपनी वैल्यू का पता नहीं है, अभी तुमको अपने भाग्य का नशा नहीं है, लेकिन जब संसार के लोग तुम्हारे भाग्य का गुणगान करेंगे तब तुम्हें नशा चढ़ेगा। माताओं कहेंगे आपके चरण छू लें, 10 साल भगवान की पालना ली, हमें बताया नहीं। आप कहेंगे बताया तो था, एक मुझे कहती अभी मैं कहीं गया था, मुझे पिछले जन्म में ही ज्ञान क्यों नहीं मिला, मैं माता बन गई अब सब गड़बड़ हो गई, पिछले जन्म में मिलना चाहिए था जब बाबा आए थे। मैंने कहा तुम भूल गई, तुम्हें दिया था तुमने माना नहीं था। कहा मुझे तो याद नहीं। हम सारे संसार को ज्ञान नहीं दे रहे खुले, हम लोग मानते नहीं है, तब कहेंगे हमें क्यों नहीं बताया, और हम कहेंगे आपको बताया था आपने सुना नहीं था। तो अपने भाग्य का नशा चढ़ेगा बहुत, 20 साल 25 साल 30 साल भगवान की पालना ली, क्या क्या देखा इन आंखों से, क्या क्या देखा। मैं जब यहाँ के बैठता हूँ ना क्लास कराने, मुझे बहुत सीन याद आते हैं, बाबा यहीं आते थे ना ओम शांति भवन से पहले, यहीं कितनी अच्छी मुलाकातें हम लोगों से हुई। लेकिन नशे का सीन सुना दो, अव्यक्त बाबा मधुवन वालों से मिलने आए, पहले बहने मिल रही थी, भाई लोगों को कहा गया खाना खाने चल जाओ, घरेलू प्रोग्राम, बाप है ना वो तो थोड़ा क्या बैठे रहोगे, यही तो बाप की बात है। भाइयों को भेज दिया खाना खाने, अब बहने पूरा हो गई मिलके, अब वहां आवाज पहुंची, लोग गए बाबा मिलने वाला, बाबा मिलने वाला, वहां खाना खा रहे सब, बाबा को मैसेज आया बाबा खाना खा रहे पांडव तो सब, कहा कोई बात खाने दो आराम से खा के आओ बच्चो, है ना सुशील प्यार, प्यार को सोचो क्या क्या इसमें, यही कहा जल्दी आओ नहीं, प्यार से अच्छे से खा के आओ, कोई बात नहीं बाबा बैठा है। तब तो बाबा 11:30 तक रहता था, तो इस हॉल के कई सीन मैं सोचता रहता हूँ, इन आंखों से संगम युग पर क्या क्या देखा, अगर उसे याद करें तो ऐसा नशा चढ़ता है ऐसा नींद भी ना आए रात को, कितने सुंदर सुंदर अनुभव इन जगह पे। बाबा के कमरे में बाबा आए, कई जगह आए, बता दूं यहाँ जहाँ नीचे लेके चले ना, इसके ऊपर छोटा सा हॉल वहाँ आए, इस ये हिस्ट्री हॉल में नीचे ही बैठा दिया बाबा को, साइड में गद्दी डाल के नीचे वहाँ आए कई बार, ट्रेनिंग क्लासेस सेक्शन उसमें एक बड़ा सा रूम है इस तरफ, वहाँ आए कई बार। हाँ आंगन में तो जब संख्या ज्यादा आने लगी, एक बार 1000 आ गए तो यहाँ तो बैठ नहीं सकते, तो आंगन में टेंट लगा, वहां आए बाबा कई बार आए होंगे, उसके बाद ओम शांति भवन बना। ये सारी जगह एक पहाड़ी थी, किसी सरदार की थी, उसने 70,000 में दे दी थी। वो विदेश का था, उसको जाना था, 70,000 में दे गया। उन दिनों के 70,000 समझ लो अब के कम से कम 7-10-12 लाख तो हो ही गए, बस सस्ती। तो बाबा ने हम सबको बहुत बड़ा भाग्य दिया है ना, था प्राप्तियों की लिस्ट बना लेना, और अब सबको वो प्राप्तियां करानी है। इसलिए मैं अच्छे पुरुषार्थियों को सामने रख के बोलता हूँ, समय नाजुक आ रहा है, उन चीजों से अपने को मुक्त कर लो जिनसे आराम से मुक्त किया जा सकता है, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जब इस संसार में हाहाकार हो जाएगी, अभी तो हम सरकारों को दोष भी दे देते हैं, भाई इसने ये कर दिया, उसने कर दिया, गलत निर्णय लिया। जिस दिन भूकंप होने लगेंगे, कोई किसी को दोष ही नहीं दे पाएगा। तब हमें अपनी स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं को मदद करनी होगी। अब सोचो भारत में ऊंची ऊंची बिल्डिंगियां भी बन गई हैं, जब वो गिर जाती हैं तो कितनी दुर्गति होती है, कितने लोग दब जाते हैं, ऐसे में उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता, न डॉक्टर न परिवार वाले। वो अपने इस देवों को याद करते हैं। मैं एक सीन सुनाया करता हूँ, शायद यहाँ नहीं सुनाया। दिल्ली में हम थे 2-3 साल पहले, तो एक प्रोफेसर है मनोरोग की, तो उसने कहा हमारा बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, डायरेक्टर पूरा एंटी है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम नहीं सुनता, उसके पास चलना है। हम सोचते हैं चलो बाबा कुछ कराएगा, जो कराएगा हो जाएगा। हम जा बैठे उसके पास, बड़ा सा रूम था उसका, काफी बड़ा, 20x20 का होगा। वो हमारी ओर देखे नहीं, हमसे कुछ बात न करे, अपना काम कर रहा है इधर उधर। बहन जी ने कहा ये सब आए हैं, तो मैंने ऐसे ही एक दो उसको बातें सुनाई। हम तब तक, जब तक वो हमें नहीं देख रहा था, हम उसे देख रहे थे, क्या कर रहे होंगे, उसे वाइब्रेशन दे रहे थे कि जगाओ इसको भाई, जगो। तो मैंने उसको एक दो अनुभव सुना दिए कि मैं भी मनोरोगों को इस तरह से ठीक करने की राय देता हूँ, और बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट ठीक हो गए। अब उसमें जागृति आई, पता नहीं क्या हुआ, 1-2 मिनट में उसने कहा अच्छा बहुत अच्छा है, अरे मैं आपको अपना सारा हॉस्पिटल दिखाता हूँ। अब वो बदल गया, एंटी वेंटी क्या था उसका, सब रुख बदल गया। पीछे मुझे पता चला इसकी पत्नी इसको डाइवोर्स दे के भाग गई है, ये अकेला है बेचारा, इसलिए दुखी भी है, ये भी मानसिक रोगी है। तो वो सभी रोगियों से बहुत प्यार करता है। अब तो हमारे हाथ में आ गई थी सब बात, हमें पता चल गया उसकी राम कहानी। तो बेचारा ले गया हमें, एक एक चीज दिखा रहा, बहुत सारे, कुछ लोग पूरे पागल हुए हुए, कुछ लोग आधे, हम लोग जा रहे, कोई हमें हाथ जोड़ के नेताजी आ गए प्रणाम, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, हम तो तैयार थे इस सब के लिए कि ये कुछ कुछ बोलेंगे। एक बड़े से हॉल में हमें ले गया वो, उन्हें हमारे कपड़े देख के यही कहा ना नेताजी आए हैं कोई। तो हमने एक वंडरफुल चीज देखी जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी, कि लाइन में जैसे ऐसा हॉल है तो इस लाइन में खाटे पड़ी हैं उनके, इस लाइन में खाटे हैं, बीच में खाली है, तो सभी ने अपनी बेड के पीछे, बेड के पीछे तो जगह बनी हुई थी, किन्हें कुछ रखा हुआ था, किन्हें कुछ, लेकिन अधिकतर ने, किसी ने हनुमान का चित्र, किसी ने दुर्गा का चित्र, किन्हें संतोषी माँ का चित्र, किन्हें गणेश का, विष्णु का, जितने भी हमारे देवी देवता ना वो वहां सब उपस्थित थे। मैंने उनसे पूछा डायरेक्टर से कि ये सब क्यों रखे, कहा ये एक वंडरफुल बात है कि इनको ये पता नहीं है हम कहाँ हैं, इनको ये पता नहीं हमारे कौन है दुनिया में, उनमें से कई लोग तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं उनको जानकारी, ये सब कुछ भूले हुए, कोई इनसे मिलने नहीं आता, ये किसी को याद नहीं करते, लेकिन जब ये सवेरे उठते हैं तो हाथ जोड़कर इनके सामने खड़े हो जाते हैं मूर्तियों के, जैसे आप चुप हो गए हम भी शांत हो गए, हम साथ थे। हम सोचने लगे ये सारे संसार को भूल गए हैं, लेकिन अपने इष्ट देव देवियों को नहीं भूले, अभी भी इनको उम्मीद वही है, केवल यहीं से कुछ मिलेगा। दिमाग नहीं, मेमोरी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन स्मृति में देवी देवता छाए हुए हैं। हम वहीं से वापस आ गए थे गंभीर होके, ये सोचते हुए कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, इस संसार में कौन कौन हमें याद करते हैं, क्या हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर रहे हैं। दूसरे एक हॉस्पिटल में भी हमें ले जाएगा, ये हॉस्पिटल फरीदाबाद है दिल्ली के पास। एक डॉक्टर जो थोड़े दिन पहले ज्ञान में आया था, उसको 6-8 मास हुए थे, उसने कहा मेरा आयुर्वेदिक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां चलो आप। वहां उसने रखे हुए थे 19 ऐसे पेशेंट जिनकी मेमोरी पूरी तरह खत्म, जीरो मेमोरी, समझते माता है, याददाश्त, जिन्हें ये पता नहीं वो कौन है, कहाँ है, क्या है, खाना भी है क्या, उठना भी है क्या, सोना भी है क्या। एक मेजर भी था उसमें। मैंने कहा आपने इनको क्यों रखा, इनके परिवार वाले आपको कुछ देते हैं? कहा नहीं, कोई नहीं देता, ये बिल्कुल अनाथ हैं, मैंने इनको रख लिया है, मैं अपने खर्चे से इनकी पालना कराता हूँ, दवाई जो संभव है इनको दी जाती है, नर्सिस मेल फीमेल दोनों पुरुष स्त्री रखे हुए हैं उनकी सेवा के लिए। हम उसे भी देख के हैरान हुए, ज्ञान में भी वो थोड़े ही समय से था, कि देखो ऐसे भी लोग हैं संसार में, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, जिनके कारण संसार स्थिर है, केवल पापी नहीं है यहाँ, पुण्य आत्माएं भी हैं, कि जिनका संसार में कोई नहीं, ये डॉक्टर उनको रखे हुए अपने पैसे से, अपने घर में बड़ा बनाया हुआ उसने भी, काफी उसकी जमीन थी, वो सारी उसने हॉस्पिटल के लिए लगा दी अपनी। तो हम सब विचार करें, हम अनेक भक्तों के इष्ट देव और देवियां हैं, हमारे कर्तव्य हमें रोज बुलाते हैं, तुम केवल जीवन जीने के लिए, थोड़े बहुत काम करने के लिए, परिवार की पालन कर दी, बच्चों को संभाल लिया, केवल इसके लिए नहीं हो, तुम्हें अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जगाए आप सभी अपने को व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त। अब बुद्धिमान वही होंगे जो अपने को हर तरह के व्यर्थ से मुक्त कर दें। सुन लो सभी माताएं, बुद्धिमान वही माने जाएंगे जो अपने को हर तरह के व्यर्थ से मुक्त कर दें। बहुत चिंताएं हैं संसार में, बहुत दबाव है संसार में, अनेक लोग दबाव में जी रहे हैं, बहुत परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ रही हैं या नहीं? मैं तो बाहर जाता हूँ, बहुत लोग मिलते हैं, उनकी परेशानियां देखकर लगता है कि हम लोगों के कर्तव्य बहुत जबरदस्त हैं, हमें और सब चीजें छोड़कर अपने को पावरफुल बनाकर इन सबको अच्छे वाइब्रेशंस देनी चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति आ जाएगी लोग न मर पाएंगे न जी पाएंगे। समय तेजी से आता जा रहा है, 2020 आते आते मानसिक रोग तूफान बनकर इस संसार को अपने जंजाल में उलझा लेंगे, इसलिए हमें भी खुद ध्यान रखना है। बोलो क्या, कोई भी चीज इधर नहीं बैठा लेनी है दिमाग में, कोई भी चीज ऐसी नहीं बैठा लेनी है जो चिंता देती रहे, जो भय पैदा करती रहे, जिसमें हमारी शक्तियां जाती रहें, जो हमारे चिंतन को निगेटिव करता रहे। बातें बहुत हैं, परिवारों में बहुत बातें हैं, किसी को परिवार का सहयोग है, किसी को नहीं है, किसी के बच्चे अच्छे हैं, किसी के नहीं हैं, किसी का पति पत्नी अच्छे हैं, किसी के नहीं है, ये सब है, लेकिन हमें अपने को खुद संभालना है। बहुत हल्के रहने की प्रैक्टिस करें सभी, हल्के। जो व्यक्ति हल्का रहता है उसके दिमाग में कोई बात ठहरती नहीं, आई और गई। और जो बहुत सीरियस होते हैं, हर बात को सीरियस लेते हैं, मैंने बच्चे के लिए इतना किया, इसने क्या किया मेरे लिए, बस एक ही संकल्प ने जीवन नष्ट कर दिया होता है। एक संकल्प केवल, मैंने अपने बच्चे के लिए इतना किया, इसने मुझे क्या दिया, बस बीमार मानसिक रूप से रोगी। बचना है इन संकल्पों से। आपने अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो कुछ किया है वो क्या किया है, माताओं ने वो कर्तव्य पालन किया है। आपके घर में बच्चों ने जन्म लिया, आपका कर्तव्य था उनकी पालना करना, उनको पढ़ाना, शादियां कराना, जितना अच्छे से अच्छा हो। अब वो क्या करते हैं आपसे, आपको गाली देते हैं या कुछ और करते हैं, हल्का कर दो अपने को, नहीं तो चीजें हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती है। क्योंकि मेरे सामने ऐसे केस आते रहते हैं, बहुत बच्चे ने ये कर दिया, अब हमें बहुत कष्ट होता है, हम निकल नहीं पाते, कितना प्यार था, बस उसकी शादी हुई और खेल बिगड़ गया। तो अपने को बहुत हल्का रखेंगे, बहुत खुशी में, जितनी खुशी हम सबको दी है बाबा ने, उतनी संसार में दी किसी को, किसी को नहीं दी। तो सवेरे मन का डांस क्लासेस बहुत करा ली हमने भी, औरों ने भी कराई होंगी, सवेरे मन का डांस और उसके द्वारा मन का मौन, तो मन शक्तिशाली बनता जाएगा। ओम शांति। तैयारी करेंगे बाबा के आने की सभी चार दिन, ठीक है, अच्छी तैयारी करेंगे।